కాన్షియస్ ఆఫ్ దట్ మురళి 11th May 1984 కుమారస్య ములాఖాత్ గ్రూప్ నంబర్ 4 చౌథా గ్రూప్ కుమారో కో పేపర్ దేనే కే లియే యుద్ధ కర్నీ పడతీ హై పవిత్ర బన్నా హై యహ సంకల్ప కియా తో మాయా యుద్ధ కర్నా శురూ కర్ దేతీ హై కుమార్ జీవన్ శ్రేష్ఠ జీవన్ హై మహాన్ ఆత్మాయే హై అభీ కుమారో కో కమాల్ కర్కే దిఖానీ హై సబ్సే బడే సే బడీ కమాల్ హై బాప్ కే సమాన్ బన్ బాప్ కే సాథీ బనానా జైసే ఆప్ స్వయం బాప్ కే సాథీ బనే హో ఐసే ఔరో కో భీ సాథీ బనానా మాయా కే సాథియో కో బాప్ కే సాథీ బనానా ఐసే సేవాధారీ అపనే వరదానీ స్వరూప్ కే సే శుభ భావనా ఔర్ శుభ కామనా సే బాప్ కా బనానా హై ఇసీ విధి ద్వారా సదా సిద్ధి కో ప్రాప్త కర్నా హై జహాం శ్రేష్ఠ విధి హై వహాం సిద్ధి జరూర్ హై కుమార్ అర్థాత్ సదా అచల్ హల్చల్ మే ఆనే వాలే నహీ అచల్ ఆత్మాయే ఔరో కో భీ క్యా కర్తీ హై అచల్ బనాతీ హై తో చౌథా గ్రూప్ క్యా సునా కుమారో కో పేపర్ దేనే కే లియే యుద్ధ కర్నీ పడతీ హై పవిత్ర బన్నా హై యహ సంకల్ప కియా తో మాయా యుద్ధ కర్నా శురూ కర్ దేతీ హై కుమార్ జీవన్ శ్రేష్ఠ జీవన్ హై మహాన్ ఆత్మాయే హై అభీ కుమారో కో కమాల్ కర్కే దిఖానీ హై తో పవిత్ర బన్నా హై యహ సంకల్ప కియా తో మాయా యుద్ధ కర్నా శురూ కర్ దేతీ హై నహీ కియా తో కోయి యుద్ధ నహీ హై జైసే హీ సంకల్ప కియా వైసే హీ యుద్ధ చాలూ కిస్సే మాయా సే మాయా అర్థాత్ వికారో సే సంకల్ప కర్తే హీ జిస్ చీజ్ కా సంకల్ప కియా వో భావ ఔర్ హీ తీవ్రతా సే ఉత్పన్న హో జాతా హై మన్ మే तो पवित्र बनना है यह संकल्प करते ही ब्रह्मचर्य की पवित्र प्रतिज्ञा करते ही अब्रह्मचर्य जो है अब्रह्मचर्य के संकल्प वो आना चालू होते हैं तो माया युद्ध करना शुरू कर देती है माया सुन रही है तो क्या किया जाए फिर युद्ध करनी है कि नहीं करनी है संकल्प तो करना है परंतु संकल्प करते ही माया युद्ध करना शुरू कर देती है क्या किया जाए
योगी युद्ध नहीं
हम नहीं कर रहे वो कर रही है हम नहीं कर रहे वो आके कर रही है
योगी है योगी के सामने क्या
है यदि युद्ध हो भी जाए तो ये कैसे माना जाए कि जीत हमारी ही होगी जीत के लिए क्या आवश्यक है मुरली तो है और निश्चय चाहिए कि जीत हमारी होगी और दृढ़ता चाहिए हमारे साथ कौन है और नहीं संसार में जीत के लिए क्या चाहिए शस्त्र चाहिए जिसके पास जितने अधिक शस्त्र होंगे वो उतना निश्चिंत होगा कि जीत हमारी होगी शस्त्र बल निश्चय मनोबल बुद्धि बल और हिम्मत साहस उमंग उत्साह और विश्वास जीतने की विधि आगे जो कहा ना कि इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हो मेथड हमारी कैसे मेथडोलॉजी क्या अपनाई है उसके आधार पर जीत होगी ये जीत माया पर है माया अर्थात चाहे विकार चाहे कमजोरी चाहे पुराना संस्कार या पुराना स्वभाव कोई आदत लंबे समय से एक आदत चल रही है अभी इस आदत को जीतना है जैसे ही संकल्प करेंगे वो आदत जैसे कि चेतन रूप धारण कर लेती है लड़ने के लिए। और ज्यादा त्यागी की परिभाषा दी है आज बाबा ने मंजू बहन प्रदान में, कौन सी है? हाँ अर्थात त्याग, अर्थात त्यागी, अर्थात पुराना स्वभाव और संस्कार का भी, संकल्प और संस्कार दोनों का भी क्या त्याग, ये त्यागी है। त्यागी और तपस्वी की परिभाषा दी है। तो वो आता है तो वो नहीं पूछेंगे। तो माया को पेपर देने के लिए युद्ध करनी पड़ती है, पवित्र बनना है यह संकल्प किया तो युद्ध कर, माया युद्ध करना शुरू कर देती है। कोई भी एक स्वभाव, कोई भी एक संस्कार, कोई भी एक आदत, चाहे वो कुछ भी हो, इस तरह से जो भी है, जो कि हमको लगता है छोड़ना है, जैसे ही संकल्प करते हैं कि ये छोड़ना है, तुरंत विरोध अपोजिशन उधर से चालू हो जाता है। तब तक कुछ नहीं था, जब संकल्प किया ये नहीं करना है तो वो करने की इच्छा बार बार होती है। तब तक कुछ नहीं था, कोई लेना देना भी नहीं था उससे। वो जैसे बताया ना, एक व्यक्ति अपने गुरु के पास जाता है, कहता है मुझे मंत्र दो, मुझे मंत्र दो, मुझे मंत्र दो। वो कहता है मैं नहीं दूंगा मंत्र, जाओ यहां से भागो, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है। उसको भगाता है हमेशा। तो उसको लगता है जरूर कोई कुछ तो है इनके पास। जो साधु पत्थर मारते हैं ना, उनके पीछे लोग और ज्यादा भागते हैं। उनको लगता है इनके पास कुछ है, कुछ है, कुछ है। तो वो जितना उसके पीछे जाता है, फिर उसको छोड़ता ही नहीं है वो। तो साधु बहुत एक बार परेशान होकर उसको मंत्र देता है और कहता है बस सब कुछ करना, मंत्र पढ़ते समय 5 बार मंत्र पढ़ना है, परंतु बंदर की याद नहीं आनी चाहिए। बस एक ही कंडीशन है, मंत्र सुबह सुबह उठ के, कल सुबह उठ के पढ़ना है 5 बार, परंतु बंदर की याद नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति कहता है कि मेरा बंदर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, मैंने आज तक उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं है, तो मुझे याद आने का तो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ से जैसे निकलता है सीढ़ियों से, तभी थोड़ा थोड़ा बंदरों के बारे में संकल्प चालू होते हैं। जब दरवाजे से बाहर निकलता है, तो रास्ते पे चलता है, तो लगता है जैसे कि झाड़ियों के पीछे कोई बंदर है। पर वो सोचता है, अरे मैं क्यों सोच रहा हूँ बंदरों से, मेरा क्या लेना देना, आज तक कभी बचपन से लेके अब तक सोचा नहीं है, बंदर से मुझे कुछ करना ही नहीं है। जैसे आगे बढ़ता है, घर में प्रवेश करता है, ऐसे लगता है जैसे घर की खिड़कियों में भी बंदर है। दूसरे दिन सुबह उठता है, नहाने जाता है, तो लगता है खिड़की में बंदर बैठा है। जैसे 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 आगे बढ़ते जाता है मंत्र की तरफ, और बंदर, बंदर और मंत्र, मंत्र और बंदर, बंदर और मंत्र, ये संयुक्त तो इतने हो जाते हैं कंबाइंड कि अभी वो जैसे ही मंत्र पढ़ने जब बैठता है तो पढ़ ही नहीं पाता है। कभी इधर कंधे पर बंदर, तो कभी सिर पे बंदर, कभी पीछे बंदर, तो कभी सामने बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। आखिर तो उस गुरु के पास जाता है, कहता है लो आपका मंत्र। इस जन्म में ये संभव नहीं है, क्योंकि इस जन्म में मंत्र और बंदर कंबाइंड हो चुके हैं। अगर अगले जन्म में आऊंगा, अभी अगले आपके पास, तो जो भी मन का स्वभाव ऐसा है कि उसको कहो, जैसे साइकोलॉजिस्ट ने भी कई सारे उदाहरण दिए हैं, एक बहुत बड़ा रास्ता है और हम उसमें साइकिल से जा रहे हैं। रास्ते के किनारे में एक पत्थर है, छोटा सा पत्थर है। व्यक्ति को कहा जाता है कि तुम सब जगह जाना, पर वो जो पत्थर है उससे नहीं टकराना। रास्ता बहुत बड़ा है, चौड़ा रास्ता है, पत्थर यहाँ है, तो यहां से ही उसके संकल्प चालू हो जाते हैं कि उस पत्थर से नहीं टकराना है, उस पत्थर से नहीं टकराना है, उस पत्थर से नहीं टकराना है। जाते 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 सीधा उसमें टकरा दे, टकराता ही है। संकल्प टकराते हैं पहले, तो क्या किया जाए? बाबा कह रहे हैं पवित्र बनना है यह संकल्प किया तो माया युद्ध करना शुरू कर देती है। एक तो विधि ये है, फिर संकल्प भी नहीं करो, पर श्रीमद मिल रही है, संकल्प करना है, अब क्या करें? एक तो ये संकल्प करो ही नहीं, तो जहां है वहीं रहेंगे, फिर ना तो स्वभाव बदलेगा, ना संस्कार बदलेंगे, ना आदतें बदलेगी, ना दृष्टि बदलेगी ना वृत्ति बदलेगी, जो देह भान भरा पड़ा है वैसा ही रहेगा, बदले कैसे? अगर संकल्प करते हैं तो सीधा युद्ध खड़ा होता है।
संकल्प कर दे,
कौन सा संकल्प करो फिर? अच्छा वाला। संकल्प तो करना है, परंतु ऐसा संकल्प करना है कि उसमें निश्चय समाया हो, उसमें उमंग उत्साह समाया हो, जो हमने क्वालिटीज बताई जीत के लिए क्या क्या चाहिए वो सारी समाई हो उसमें। जैसे यहाँ अगर बंदर का उदाहरण है तो उसमें क्या करना चाहिए था उस व्यक्ति ने? इसका उत्तर तो कहीं उत्तर उस कहानी में दिया नहीं है, पर हम सोच सकते हैं उसने क्या करना चाहिए था। हाँ, एक नए कल्पना को निर्माण करना है। अगर बंदर एक कल्पना है तो उससे अधिक शक्तिशाली जो है उसको साथ में रखना है, कि बंदर तो है अभी उसको दिख रहा है, अभी कर कुछ नहीं सकते। जैसे बंदर के बारे में सोच रहा है, बंदर दिख रहा है, पर विधि क्या है? आप छूटे कैसे हो? किसी और प्राणी को अपने साथ लाना पड़ेगा उसको, वो भी काल्पनिक ही होगा परंतु उससे अधिक शक्तिशाली होगा, तो शायद हो सकता है कि वो जीत जाए। या ऐसा भी हो सकता है सामने बंदर खड़ा है पर मेरे सामने पास यदि शेर है, चीता है, तो वो बंदर फिर भयभीत नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है? इनविजिबल है। तो हम भी एक नए इनविजिबल को क्रिएट करें अपनी कल्पना में, उससे भी अधिक शक्तिशाली। हाँ, मतलब ये हो रहा है ना। अभी ये अगर कह दो कि ये झूठ है, ये तो मन स्वीकार नहीं करता है इसको, ये झूठ है ये स्वीकार नहीं करता है। कई सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं, उनकी हमारे एक भाई है, उनकी दादी है, वो दादी जब भी आती है ना उनको कहना है कि यहाँ पर सांप है एक छाती में। वो जब भी आती है उसका एक्सरे करके दिखाया, सब करके दिखाया 2 साल पहले, तो मानी ही नहीं बिल्कुल। अभी जब आई थी तो अभी कहने लगी 2 है अभी, तो पहले 1 था अभी 2 हो गए। उसको समझाना, ये समझाना कि अरे गलत है, ये झूठ है, वो नहीं स्वीकार करते। नहीं, उसको आवाजें आती है रात में वहां से, उसको इधर उधर उधर करके, कि बूढ़ी है बहुत, पर ये भाव उसका 40 साल से है, तो कैसे उसको वो जैसे बताया था एक बार। तो एक कल्पना को समाप्त करने के लिए दूसरी कल्पना और उससे अधिक शक्तिशाली निर्माण। मन में जैसे ही संकल्प आता है कि हमने कोई संकल्प किया और उसके विरोध के संकल्प आते, अपोजिंग थॉट्स रेस करना, एवर्शन थेरेपी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। एवर्शन थेरेपी मींस अगर किसी को सिगरेट से मुक्त होना है तो वो सिगरेट के प्रति घृणा अपने मन में उत्पन्न करे, नफरत अपने मन में उत्पन्न करे, तब वो कहीं जाके उससे छूट सकता है। एक तो दूसरा, वो जो किताब हमने कही थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है। एक व्यक्ति है, पत्नी है, छोटी बच्ची है, क्योंकि वो इतना सिगरेट पीता है कि उसकी पत्नी उसको छोड़ के देती है और अपनी बच्ची को भी लेके चली जाती है। वो कहती है जब तक तुम नहीं छोड़ोगे ये बच्ची को मैं तुमसे मिलने नहीं दूंगी। तो वो बड़ा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, अब क्या करे। तो वो एक बहुत सारी मेथड करता है पर नहीं छूट पाता है, तो एक नई मेथड करता है कल्पना की, विजुअलाइजेशन करता है कि मैं अपनी बच्ची के साथ में खेल रहा हूँ रोज। कई दिनों तक ये विजुअलाइज करता है और वो तभी हो पाता है कि जब मैंने ये छोड़ दिया है, और ये मन में ही क्रिएट करता है कि मैंने ये आदत को छोड़ दिया है विजुअलाइजेशन से, और धीरे धीरे वो उस आदत से छूट जाता है, क्योंकि उसे कुछ और अधिक एंजॉयमेंट वाला, और अधिक एंटरटेनमेंट वाला, और अधिक मनोरंजनकारी ऐसा कुछ मिल रहा है। तो जो छोटा है, क्षुद्र है, वो छूटता है। तो मन को क्या चाहिए? मन की प्यास सुख की है। यदि उसे ईश्वरीय सुख नहीं दोगे तो वो विकारों का सुख के पीछे भागेगा भागेगा। यदि उसे अमृत वेला अतीन्द्रिय सुख नहीं दिया जाए तो वो सारे दिन भर या तो भोजन में सुख को ढूंढेगा, किसी व्यक्ति में सुख को ढूंढेगा, या टीवी में, या सीरियल में, या कोई पिक्चर मूवी, कहीं ना कहीं सुख को ढूंढेगा और भागेगा। यदि उसे इस देह से परे भी कोई सुख है, वह सुख नहीं दिया जाए तो वो देह के सुख की तरफ जाएगा, और जब देह के सुख की तरफ जाता है तो फिर हम उसे डांटते हैं, आत्मग्लानि पश्चाताप के भाव उत्पन्न होते हैं। परंतु करना क्या है, पर उसकी प्यास तो सुख की है, उसको सुख चाहिए तो दो उसको सुख, ये नहीं दोगे तो उसके पीछे जाएगा, अतीन्द्रिय नहीं दोगे तो इंद्रियों के पीछे जाएगा। इसके लिए कवि अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा है, अमृत वेला स्वयं को परमात्मा प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्यार तुम्हें अपनी तरफ ना खींचे। इतना ईश्वरीय प्रेम से स्वयं को भर दो, इतना इस ज्ञान से स्वयं को भर दो कि कहीं और बुद्धि भटकना भटकने ना पाए। तो मन के स्वभाव को समझना, मन में अगर जबरदस्ती कुछ भी चीज की थोपी जाए तुरंत रिजेक्ट करता है वो, कोई भी नियम उसको जबरदस्ती दिया जाए तो वो रिजेक्ट करता है, कुछ भी जबरदस्ती किया जाए उसको बड़े प्यार से समझाकर अगर किया जाए तो ही वो मानता है, बच्चे की तरह है वो। अगर किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया जाए वो शांत नहीं होता है, फिर वो रोते रहता है और जोर से रोता है, उसको कुछ भी करो उसको वही खिलौना चाहिए, वो छीना जो उससे छीना है वही उसको चाहिए। इसके लिए कुमारों को पेपर देने के लिए युद्ध करनी पड़ती है, पवित्र बनना या संकल्प किया तो माया युद्ध करना शुरू कर देती है, परंतु पवित्र बनना ये संकल्प तो करना ही है, क्योंकि बिना पवित्र बने आत्मा को वह सुख वो प्यार नहीं प्राप्त हो सकता है। अभी दूसरी तरफ युद्ध भी है, तो अभी प्रश्न हमने पूछा था कि युद्ध में अगर जीतना है तो किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो किसी ने कहा था शस्त्र, उमंग, निश्चय, विश्वास, हिम्मत, साहस, बुद्धिबल और क्या चाहिए, अनुभवी, जितना अनुभव हो उतना अच्छा है। जो योद्धा अनुभवी है, जिसने कई सारे युद्ध खेले हैं जीवन में, जिसका पहला ही युद्ध है उसके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर जो बहुत अनुभवी है जिसने कई सारे युद्ध खेले हैं उनके लिए वो युद्ध जीतना सहज है, आसान है। और भी कुछ चाहिए? नहीं, इधर नहीं, बाहर, बाहर का युद्ध जीतने के लिए नहीं, उनको बाबा का पता ही नहीं है। अच्छा,
खुफिया तंत्र,
खुफिया तंत्र वो विधि में आ जाएगा सारा, किस विधि से युद्ध जीता जाए। और आत्मविश्वास, जिन्हें विश्वास है कि हम जीतेंगे वो स्वतः ही जीत जाते हैं। जेन जेन गुरु जो है वो एक कहानी सुनाते हैं जापान की, किसी एक राज्य में, एक छोटा सा राज्य है, वहां पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। जो दूसरा राजा है वो अधिक शक्तिशाली है, ताकतवर है, उसकी सेनाएं भी ज्यादा है, युद्ध का सामान उसके पास है, सामग्री उसके पास है। अब जो ये छोटा राज्य है, यहाँ तक छोटे राज्य ने सुना है कि जिस जिस राज्य में इस बड़े राजा ने आक्रमण किया है वो सारे ही राज्य पराजित हुए हैं। तो वहां का जो सेनापति है, अब जो जिस राज्य पर आक्रमण किया वो इतना घबरा जाता है, वो है बहुत शक्तिशाली पर इतना घबरा जाता है, इतना घबरा जाता है, सोचता है ये युद्ध क्यों लड़ा जाए, ये युद्ध लड़के भी हम हारने ही वाले हैं, क्योंकि 10 गुना अधिक इनकी सेना है, 10 गुना अधिक इनका बल है, 10 गुना अधिक ये हमसे अधिक शक्तिशाली है, हम इसमें जीत ही नहीं सकते, नाहक अपने सैनिकों को मरवाने से क्या फायदा। सोचता है कि ये युद्ध में तो हथियार डाल देने चाहिए, राजा को जाकर कहता है, सम्राट से कहता है कि ये युद्ध को जीतना हमारे लिए संभव नहीं है, तो क्यों ना हम पहले ही हार स्वीकार कर ले, क्योंकि वैसे भी हम सब मारे जाएंगे अगर युद्ध खेले तो। राजा भी कहता है कि बात तो बहुत सही है, क्योंकि वास्तव में जो राजा है आक्रमणकारी, आक्रांता बहुत ही शक्तिशाली है। तो राजा रात भर बेचैन रहता है, सुबह उठकर अपने मंत्री को पुकारता है, बुलाता है वजीर को और कहता है कि क्या किया जाए, क्योंकि उसने खुद भी आज तक जीवन में बिना युद्ध खेले कभी हार को स्वीकार नहीं किया था, सीधा इस तरह से हार स्वीकार करना उसके मन को भी स्वीकार नहीं था। बड़ा चिंतित होता है क्या किया जाए, क्योंकि युद्ध अगर खेलते हैं तो हार तो निश्चित है, परंतु बिना खेले ही हार स्वीकार करना ये भी मन नहीं मान रहा है, तो क्या किया जाए। वो वजीर कहता है कि एक बार एक युक्ति है, इस राज्य के बाहर एक जैन मास्टर रहता है, एक फकीर रहता है। आज तक मैं जब भी उसके पास गया हूँ ऐसा सुझाव प्राप्त किया है कि जिससे उस समस्या का हल हुआ है, तो क्यों ना हम उसके पास चले। वो कहता है चलो, मरता क्या ना करता। तो उसके पास जाते हैं तो उस फकीर से कहते हैं कि ऐसी समस्या है। फकीर कहता है ये भी कोई समस्या है, आपने तो जीतने से पहले ही हार स्वीकार कर ली, जाओ जाकर युद्ध करो। वो कहता है हम युद्ध नहीं कर सकते, हमारा सेनापति तो पहले ही हार गया है। तो वो कहता है कि मैं सेना लेके जाऊंगा, वो फकीर कहता है। तो राजा तो और ही घबराता है, वो कहता है ये हमारा सेनापति तो इतना शक्तिशाली, इतना ताकतवर है, कितने सारे युद्ध उसने खेले और जीते है, ये तो तलवार पकड़ना भी नहीं जानता है, तो ये युद्ध कैसे करेगा। तो कहते विश्वास रखो मैं युद्ध जीत के आता हूँ। तो वो जो साधु होता है वो सारी सेनाओं को लेकर युद्ध के लिए निकलता है, सारी सेना पहले से ही उदास है, पहले ही हतबल, पहले ही मन से हार चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि हम हारने वाले हैं। तो वो जो फकीर होता है जैन मास्टर, वो बड़ा ही नाचते हंसते गाते झूमते हुए तलवार तो उसको पकड़ना भी नहीं आती है, ड्रेस पहनते हुए पहली बार ही पहना होता है, और युद्ध के लिए निकलता है और पहुंचता है उस नदी के पास जिस नदी के उस पार दुश्मन होता है, और वहां पर एक छोटा सा मंदिर होता है देवता का किसी। वो फकीर कहता है कि रुको, जब भी मैंने जीवन में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं देवता का आशीर्वाद जरूर लिया है, अगर देवता ने कहा कि हमारी अगर जीत हो जाए तो हमारी जीत निश्चित है। तो वो सारे सैनिक अवाक, वो कहते हैं कि ये क्या देवता, ये हम कैसे माने कि देवता जो कहेगा वही होगा। वो कहता है होगा, चलो मेरे साथ। सारे सैनिक मंदिर को घेरते हैं, वो अंदर प्रवेश करता है और कहता है ये देखो सोने का सिक्का है चमकता हुआ। वो कहता है मैं सिक्का ऊपर फेंकता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु यदि ये सिक्का सीधा गिरा तो जीत हमारी होगी, उल्टा अगर गिरा तो हमारी हार होगी। अभी इसके ऊपर है, अगर उल्टा गिरता है तो हम वापस चले जाएंगे, पर यदि ये सिक्का सीधा गिरा तो सब लोग सुन लो, देवता, मैं नहीं कह रहा हूं देवता कह रहे, तो जीत हमारी है। सोने का सिक्का अपने खीसे से निकालता है और ऊपर उछालता है देवता के सामने, सिक्का नीचे गिरता है सीधा। तो सारी सेनाओं में उमंग उत्साह भर जाता है, वो दिखाता है देख लो सीधा है और हमको युद्ध करनी है और जीत तो हमारी है, पहले ही निर्णय हो चुका है, अब तो केवल खेल कर आना है बस। तो सारे सैनिक में एक एक सैनिक में 10-10 सैनिकों का बल बढ़ जाता है और 10 दिन तक युद्ध करते हैं और युद्ध जीत लेते हैं और वापस आते हैं। वहां से आते आते उसी मंदिर तक पहुंचते हैं, सारे सैनिक कहते हैं अरे उस देवता का कम से कम शुक्रिया तो कहो। तो कहते कोई जरूरत नहीं है, अरे कहते कहते शुक्रिया तो कम से कम अनुग्रह कम से कम उसके पास तो चलो। तो वो कहता है इस जीत में उस देवता का कोई हाथ नहीं है, जीत मेरे वजह से हुई है। और वो सिक्का जैसे आप सबने कहा सबको दिखाता है दोनों तरफ से ही सीधा है। प्रश्न है जीत क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या था ऐसा कि जीत हो गई जो कि पहले हार होने वाली थी और अब जीत हो गई। सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास एक, और निश्चय आत्मविश्वास ये सब एक ही बात है। जो पहले हार होने वाली थी वो क्यों होने वाली थी, क्योंकि हार भी मन की ही थी, मन ने पहले ही स्वीकार कर लिया था ये जो शत्रु है बहुत शक्तिशाली है। काम विकार को जीतना साधु संत योगी तपस्वी सब ने कहा करके रखा है, असंभव है, हो ही नहीं सकता है। और हम कह रहे हैं हम युद्ध करने जा रहे हैं और हमने सुना है देखो सारे घायल धराशाही पड़े हुए महात्मा योगी सन्यासी तपस्वी उदासी, अब जब ये हार गए तो हम कहां से जीत सकते हैं। तो भगवान ने आकर क्या कहा, तुम्हारी जीत निश्चित है, हुई पड़ी है, तुम कल्प कल्प के विजयी हो। कल्प तो छोड़ो, इतना भी कहो कि तुमने 10 बार जीता है इसके पहले, तो इसके लिए अब तुम्हारे लिए जीतना। ये पहले एक ऐसा उमंग भर दिया, ऐसा उत्साह भर दिया, उस उत्साह से और उमंग से ही हम अधिक शक्तिशाली हो गए, क्योंकि जीत जो होती है वो यहां जीती जाती है, युद्ध जो होते हैं यहां जीतते हैं, यहां पर उनका निर्माण होता है और यहीं से उनको जीता जाता है। वहां जो खेला जा रहा है युद्ध के मैदान में वो कुछ नहीं है, वो 10% है, 90% जीत मन में होती है। तो मन से अगर कोई हार जाता है, उदास हो जाता है, ये मेरे से ये आदत छूटेगी नहीं, बहुत लंबे समय की आदत है, हमसे तो नहीं होगा, ये मन का ही खेल है। बंधन और मोक्ष मन का है, तो सारा कार्य जो है ये संकल्प पर करना है, संकल्प शक्ति पर। तो यह संकल्प किया तो माया युद्ध करना शुरू कर देती, करने दो युद्ध, हमारे पास भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी है युद्ध को जीतने की। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, कुमार महान आत्मा है, अभी कुमारों को कमाल करके दिखानी है, सबसे बड़े से बड़ी कमाल है बाप के समान बन, बाप के साथी बनना, साथी बनाना, जैसे आप स्वयं बाप के साथी बने। तो माया के जो साथी है, माया के साथी अर्थात संसार के लोग जो देहभान में है, जो विकारों के अधीन है, कमजोरियों वाले हैं, उनको वहां से निकालकर, उस साथ से निकालकर इस साथ में लगाना, रूहानी संघ, वरदान था ना, रूहानी संघ, बाप का संघ अर्थात रूहानी संघ, हर्षित रहेंगे, हल्के रहेंगे, वो सब होगा। जैसे आप स्वयं बाप के साथी बने हैं, औरों को भी साथी बनाना, माया के साथियों को बाप का साथी बनाना, ऐसे सेवाधारी है। तो उधर जो माया के साथी है उनको वहां से निकाल, तो वो क्यों बनेंगे, उनको जब ये टेम्पटेशन दिया जाएगा कि इसमें फायदे बहुत है, इसमें प्राप्तियां बहुत है, अटेंडमेंट्स ज्यादा है, अचीवमेंट्स यहाँ ज्यादा है, यहाँ सुख ज्यादा है, तब वो छोटा लड्डू छोड़ेंगे, पर बड़ा लड्डू दिखाना पड़ेगा तब वो छूटेगा, नहीं तो कौन छोड़ेगा लड्डू को, वो छीन लिया हाथ से तो और दुखी और पागल हो जाएंगे। इसके लिए इसी विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना, जहां विधि श्रेष्ठ है वहां सिद्धि जरूर है। कुमार अर्थात सदा अचल, अचल अचल शिव का एक नाम अचल है, अचल सुता, दुर्गा को अचल सुता कहा जाता है, अचल की जो पत्नी है अचल सुता, शिव शक्तियों को अचल सुता कहते हैं। तो शिव का एक नाम अचल, अचल अर्थात जो हिले ना, अचल संपत्ति, चल अचल संपत्ति, जो हिले ना, जो अपरिवर्तनशील है, जो अड़िग है, जो अटल है, वो सारे अलग अलग शब्द जो है ये अचल के लिए, जो हिलते नहीं है, स्थाई जो है, एक जगह रहने वाले जो है वह अचल। तो हम वह अचल है, छोटी मोटी चीजों से हिलने वाले नहीं, हलचल में आने वाले नहीं, उसके विरोध का शब्द है चल या हलचल। अचल आत्माएं औरों को भी अचल बनाती है, जो स्वयं अचल है वही औरों को अचल बना सकती है, जो स्वयं बाप के साथी है वही बाप के साथी दूसरों को बना सकती है, जो स्वयं बाप की याद में है वही दूसरों को बाप की याद दिला सकती है। तो ये था चौथा ग्रुप, एक और ग्रुप बाकी है वो आगे करेंगे। किसका है, किससे कहा था, हाँ जी कल किसका है, डॉक्टर हीना, उसके बाद में प्रभाकर भाई, संडे सुशील भाई, मंडे मंडे कमलेश भाई, ट्यूसडे पूर्णिमा बहन, ट्यूसडे वेनसडे मंजू बहन, थर्सडे
इनका,
चलो अभी थर्सडे। वैराग पर तीन भाइयों के अनुभव, तीन दादियों के अनुभव, और हापुड़, हापुड़ हंगामा पीछे है, और फिर यहाँ का पांचवा ग्रुप 25 तारीख को, ठीक है।